ये आदमी है, मैंने तो उसी के लिए नोट छोड़ा था। ये भी उसे बुरा लगा। वो किचन में आई। उसका रखा हुआ काउंटर का सामान वहां पर नहीं था। जैसे ही उसने फ्रिज खोला, वही सामान फ्रिज में पड़ा हुआ था। हे भगवान, इसको फ्रिज में कौन रखता है? तभी एक बच्चा हॉल के अंदर एंटर करता है। वो ड्राइवर राम के साथ था। राम आर्यन का ही नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली के काफी नजदीक था। वो ड्राइविंग के साथ साथ घर के पर्सनल काम भी देखता था और एक बहुत ही भरोसेमंद आदमी था। जब वे हॉल के अंदर आते हैं तो उन्हें किचन के अंदर से कोई आवाज सुनाई देती है। अंकल, जरा धीरे, लगता है कोई किचन में है, हम उसे डरा सकते हैं, आरव ने शरारत के साथ कहा। बच्चे ने देखा कि सानवी फ्रिज से कुछ निकाल रही है। वो पीछे आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे डरा देता है। वो एकदम डर के उछल जाती है क्योंकि उसके हिसाब से तो वो वहां अकेली थी। आप लोग कौन हैं? वो अपनी सांस ठीक करते हुए पूछती है। राम ने जवाब दिया, ये जय राजवंत साहब की बहन का बेटा है। इसका कोई टॉय हॉल में रह गया था तो इसे वही लेने आना पड़ा। और मैं राम हूँ। मैं आर्यन राजवंत साहब के लिए काम करता हूँ। उनके लिए ड्राइविंग भी करता हूँ, घर का भी काम देख लेता हूँ और जब ऑफिस में जरूरत होती है तो वहां भी काम करता हूँ। राम ने अपना पूरा परिचय दे दिया था। तभी जय मासूमियत से बोला, क्या आप मेरा टॉय ला देंगे? वो हॉल में रह गया था। नहीं, सानवी ने जवाब दिया, मुझे किचन सिर्फ किचन में ही आना अलाउड है, मैं घर में और नहीं घूम सकती। दीदी, आपको अगर वॉशरूम जाना हो तो जाने से कोई नहीं रोकेगा। सानवी को समझ आ गया कि वो उससे बातों में नहीं जीत सकती। प्लीज बेटा, तुम खुद ही ले आओ। उसे पता था कि वो घर में कहीं और नहीं जा सकती। चलो बेटा, हम ही ले लेते हैं, राम ने कहा। अपना खिलौना लो और चलो। अब मैं जहां आया हूं तो कुछ गेम्स भी खेल लेता हूं, जय ने शरारती अंदाज में कहा। उसे सानवी अच्छी लगी थी, इसलिए उसने कहा, दीदी अगर आप चाहें तो मेरे साथ खेल सकती हैं, मेरा मन हो रहा है आपके साथ खेलने का। वो मुस्कुराई, मैं जरूर चलती तुम्हारे साथ खेलने, मगर मेरा काम कौन करेगा, मुझे डिनर बनाना है, तुम आराम से अंकल के साथ जाओ। उधर ऑफिस में मीटिंग चल रही थी। मीटिंग में आर्यन राजवंश के अलावा उसकी बहन अनन्या राठौर, उसका बहनोई जगत राठौर और आर्यन का बिजनेस पार्टनर व दोस्त शिव मेहता भी थे। मीटिंग में बात करते हुए जगत राठौर ने कहा, तुम्हारा प्लान हमेशा बहुत अच्छा होता है, जैसा तुम सोचते हो वैसा कर देते हो। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम्हें कैसा लगता है? आर्यन ने अपनी बहन से पूछा। अनन्या ने जवाब दिया, मैं भी सहमत हूँ तुम्हारी बात से, डील तो फाइनल है, इसकी पूरी बात से हम सभी सहमत हैं, मगर एक और प्रॉब्लम है, अनन्या ने कहा। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और जहां पर आर्यन बैठा हुआ था वहां जाकर उसके गले में बाहें डाल दी। दीदी क्या प्रॉब्लम है? आर्यन ने पूछा। अनन्या ने जगत की तरफ देखा और फिर शिव मेहता की तरफ। संडे को हम लोग ब्रेकफास्ट पर मॉम के यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। मॉम कितने दिनों से हम सबको बुला रही है, मेरे पास भी उनका फोन आया था, अनन्या ने कहा। शिव ने कहा, आंटी गुस्सा हो रही थी, अगर नहीं आना तो साफ साफ कह दो कि तुम नहीं आ रही। अनन्या ने आर्यन से कहा, मैं मॉम से कह दूंगी, ठीक है, संडे को लंच हम लोग वहीं करेंगे। ठीक है, आर्यन राजवंश ने कहा। असल में आर्यन इतना बिजी रहता था कि उसे पर्सनल लाइफ के लिए टाइम ही नहीं था। उसकी मॉम जो एक अलग घर में रहती थी कितने दिनों से उसे बुला रही थी। बहुत अच्छा भाई, अनन्या ने खुशी से कहा। अब तुम लोग अपना प्लान आगे बढ़ाओ, मैं यहाँ से जा रही हूँ, कहते हुए आर्या वहां से खड़ी हो गई। आप सिर्फ वहां पर आर्यन ही रह गए थे। दीदी मुझे जूस चाहिए, हॉल में बैठे हुए जय ने जोर से सानवी को आवाज लगाई। सानवी जो काम कर रही थी उसने अपना काम छोड़ते हुए कहा, आ रही हूँ। वो आर्यन के लिए जूस लेकर जाती है। जैसे ही वो जय के पास जूस लेकर आती है वो देखती है कि वहां पड़े हुए सोफे के कुशन नीचे गिरे हुए हैं और वहां टॉयज बिखरे हुए थे। अगर तुम्हारे मामा ने देख लिया तो मुझे ही नौकरी से निकाल देगा। चलो पहले हम ये ठीक करते हैं। ठीक है दीदी, वो अपनी गेम छोड़कर उठ गया। दोनों मिलकर लिविंग रूम के सोफे के कुशन सब ठीक करते हैं, टॉयज एक साइड पर रख देते हैं। कुछ खाओगे तुम? उसके बाद शिवानी ने पूछा। नहीं दीदी, मुझे घर जाना है, मॉम घर आती होगी उससे पहले मुझे घर पहुंचना है। तो क्या तुम मॉम से पूछकर नहीं आए थे? नहीं, वहां पर मेरा कंप्यूटर खराब हो गया था, मैं गेम नहीं खेल सकता था, इसलिए यहाँ चला आया, उसने मुस्कुराकर कहा। शरारती बच्चा, हंसते हुए शिवानी ने उसका चेहरा चूम लिया। इन थोड़ी ही पलों में दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। जय राम के साथ घर चला गया था। सानवी ने अपना खाना बनाया और नोट दोस्त ने आज भी छोड़ा था। इस डिश में जो सूप डालना है वो मैंने बनाकर फ्रिज में रखी है, खाते समय निकाल लीजिए, उसने माइक्रोवेव पर चिपकाया और चली गई। शाम को आर्यन घर वापस आया। हमेशा की तरह फ्रेश होकर चेंज करके वो किचन में पहुंचा। वो अपने लिए ब्लैक कॉफी बनाना चाहता था। काउंटर पर वही सामान की बोतलें, इंग्लिश में लिखे लेबल के साथ सब सामान पड़ा था और साथ ही नोट जो माइक्रोवेव पर चिपका हुआ था। उसने ये सब देखकर ठंडी सांस ली और उसे गुस्सा भी आया। उसने वो नोट निकाला और डस्टबिन में फेंक दिया। फिर उसने अपनी ब्लैक कॉफी बनाई। डिनर के वक्त जब उसने खाना खाया तो उसे खाना खाकर बहुत अच्छा लगा। उसने काउंटर पर रखा हुआ सारा सामान हटाया, फिर खाना खाया। उसका जो गुस्सा था कि काउंटर पर सामान क्यों है, नोट क्यों छोड़ा, वो भी गायब हो गया था। अगले दिन जब सानवी आई तो काउंटर बिल्कुल क्लीन था, उस पर एक भी चीज नहीं थी। हे भगवान, मैं इस आदमी का क्या करूं, कोई भी मेरा रखा सामान क्यों नहीं छोड़ता, उसको गुस्सा आया। मगर वो जानती थी कि उसे इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। ऐसे ही काम चलने लगा था। वो खाना बनाती और नोट जरूर चिपकाती। जब आर्यन आता उसे फेंक देता। अब तो वो उसका नोट पढ़कर मुस्कुराने भी लगा था। जब सानवी कोई नई डिश ट्राई करती तो नोट चिपका कर जाती थी, मैंने फ्रेश बनाया है, जो आप बाजार से लेकर आए हैं उसे भी बहुत टेस्टी बनाया है, खा कर देखिए। और कभी कहती, मैं काउंटर पर जो दही जमाया है उसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, वरना दही नहीं जमेगा। आर्यन उस स्लिप को पढ़ता, फिर डस्टबिन में फेंक देता और उसकी बनाई हुई रेसिपी ट्राई करता। मगर अब आर्यन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई थी कि उसे काउंटर की सफाई पसंद नहीं थी। फ्रिज में भी उसका डाला हुआ सामान बिखरा रहता था। तो अब आर्यन राजवंश भी नोट छोड़ने लगा, फ्रिज को साफ रखो और काउंटर को भी। जैसे ही सानवी को ये नोट पड़ा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। लगता है इस पर भी मुझ पर असर होने लगा है, उसने सोचा। शिवानी की नजर में आर्यन राजवंश एक बुजुर्ग, एक बड़ी उम्र का आदमी था, और ऐसे ही आर्यन की नजर में शिवानी कोई बड़ी उम्र की औरत थी जो उसके घर में कुक का काम करती थी। इसी तरह दिन बीतने लगे थे। एक दिन सानवी जब खाना बनाने के लिए घर आई तो देव साहब परेशानी में इधर उधर घूम रहे थे। उसने सानवी को देखा, सानवी तुम्हारी नजर में कोई ऐसी औरत होगी जो घर के अच्छे से डस्टिंग कर सके और कोई चोरी भी ना करती हो और सामान इधर उधर रखने की जरूरत भी ना पड़े? क्यों, जो शिवानी काम करती थी उसका क्या हुआ? उसे मैंने निकाल दिया, देव ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। थोड़ा सोचने के बाद सानवी बोली, हाँ है एक, तो उसे बुला लो, मैं उससे बात करता हूँ। देव ने कहा, मैं हूँ ना, सानवी ने कहा। देखो मैं खाना बनाने तो आती ही हूँ, डस्टिंग भी कर दिया करूंगी, आपका घर इतना बड़ा भी नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल में सानवी को पैसों की बहुत जरूरत थी, उसकी छोटी बहन कृति के लिए भी उसे पैसे चाहिए थे और फिर मकान का किराया और सारे खर्चे।
देव ने कुछ पल सोच कर कहा, पक्का कर लोगी ना? वो कितने दिनों से टिकी हुई थी, वरना सब लोग काम छोड़कर जल्दी भाग जाते थे, और आर्यन से उसे खुद भी नहीं निकाला था, देव ने सोचा। से बात करने के बाद सानवी किचन में पहुंचती है। उसे एक नोट मिलता है जिस पर लिखा हुआ था, आज मैं रात को खाना घर पर नहीं खाऊंगा तो खाना मत बनाना। स्लिप पढ़कर वो खुश हो जाती है। क्या आज उसकी छुट्टी है? प्लीज़ मेरी स्टोरी पर कॉमेंट करें और साथ में रेटिंग भी दें। आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है कॉमेंट में बताएं। मुझे फॉलो करना ना भूलें और दूसरों को भी बताना याद रखें।